जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारियम जयो राधा माधव कुंज बिहारी श्रीअद्वैता दाधा श्रीवासादि भो भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज श्री रघुनंदन ठाकुर का तिरुभाव दिवस तिरुभाव दिवस है तो उनके बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। हमने चैतन्य चरितामृत एक श्लोक चुना है जिसमें रघुनंदन ठाकुर का वर्णन आता है। खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन नरहरि दास चिरंजीव सुलोचन ऐ सब महाशाखा चैतन्य कृपा धाम प्रेम फल फूल करे जाहताह दाना। समय बचाने के लिए मुझे बोला गया एक ही बार गाने के लिए। राधे श्याम प्रभु लाइक टू सिंग। ये भक्तों के नाम है खंडवासी मुकुंद दास, श्री खंड के निवासी मुकुंद दास, श्री रघुनंदन नरहरिदास चिरंजीव सुलोचन वे सब महाशाखाएं चैतन्य कृपाधाम चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भगवत प्रेम फल फूल करे करते जहा कहीं भी ताहा हर जगह दान। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ये भक्तों के नाम बताए गए हैं जो श्रीखंड में रहते थे। एक जगह का नाम है श्रीखंड वासी मुकुंद और उनके बेटे जिनका नाम था रघुनंदन, उस वृक्ष की 29वीं शाखा थी। चैतन्य महाप्रभु की तुलना एक पेड़ के साथ की गई है और सारे जो भक्त हैं वो अलग अलग शाखा हैं, ब्रांचेज हैं। तो 39th ब्रांच रघुनंदन ठाकुर और उनके पिताजी मुकुंद सरकार, नरहरि 40वें, चिरंजीव 41 और सुलोचन 42 थे। ये सभी चैतन्य महाप्रभु कृपाधाम वृक्ष के बड़ी बड़ी शाखाएं थे। इन्होंने भगवत प्रेम रूपी फल और फूल सब जगह पर वितरित किया। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा श्री मुकुंद दास नारायण दास के पुत्र हैं, यानी मुकुंद दास के पिताजी का नाम है नारायण दास और उनके एक भाई हैं जिनका नाम है नरहरि सरकार और उनके एक और भाई हैं जिनका नाम है माधवदास। तो माधवदास के भाई कौन है? मुकुंद दास के भाई हैं नरहरि, मुकुंद माधव नरहरि, ये तीनों भाई हैं और उनके पुत्र का नाम है रघुनंदन। आज भी रघुनंदन दास के जो वंश है उसके फैमिली के लोग हैं। कटवा से पास में एक गांव है जिसका नाम है श्रीखंड, 4 माइल की तरफ, और वहां पर रघुनंदन का घर था। रघुनंदन गृहस्थ आश्रम में थे, उनका एक बेटा था जिसका नाम था कनाई। कनाई के 2 पुत्र थे मदन राय, और मदन राय ने दीक्षा ली नरहरि ठाकुर से, और दूसरे का नाम था वंशीवदन। अनुमान है कि इस वंश में कम से कम 400 व्यक्ति हैं। इन सब का नाम रिकॉर्ड श्रीखंड ग्राम में दिया गया। गौर गणो देश दीपिका है किताब जिसमें बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो भक्त हैं वो गौर लीला में कौन है, मतलब कृष्ण लीला में कौन है। तो मुकुंद दास जो है गोपी थे, उनका नाम था वृंद देवी, वे श्रीखंड गांव में रहते थे, महाप्रभु को बहुत प्रिय थे और उनकी अद्भुत भक्ति और कृष्ण प्रेम का वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 15वें अध्याय में किया गया, जो थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। और भक्ति रत्नाकर में बताया गया कि रघुनंदन चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की सेवा करते थे और नरहरी सरकार जो है वो मुकुंद सरकार के भाई हैं, रघुनंदन के चाचा और माधव सरकार के भाई। यस, मैं चेक करूं आप साइलेंट मोड में या फ्लाइट मोड में है। चैतन्य मंगल में एक और मत बताएंगे, नरहरी सरकार जो कि नरहरी सरकार के शिष्य का नाम है लोचनदास ठाकुर। लोचनदास ठाकुर ने भजन लिखे परम करुणा और चैतन्य मंगल किताब लिखी है, और उसमें बताया गया कि गदाधर दास और नरहरी सरकार चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे, लेकिन कोई विशेष उल्लेख नहीं किया कि वो श्रीखंड गांव से। और दो भक्त हैं श्रीखंड के, सब भक्तों का नाम बताया गया, चिरंजीव और सुलोचन। चिरंजीव के दो पुत्र हैं, उसके बड़े पुत्र का नाम है रामचंद्र कविराज है। रामचंद्र कविराज किसके शिष्य हैं? श्रीनिवासाचार्य। श्रीनिवासाचार्य के शिष्य हैं, लेकिन ज्यादा दोस्ती उनकी नरोत्तम दास ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर घनिष्ठ पार्षद है। और छोटे भाई का नाम है गोविंद दास कविराज, जिन्होंने भजन लिखा है, भजन हूं रे मन श्री नंद नंद। चिरंजीव की पत्नी का नाम सुनंदा था। ये सब रिलेशन का टेस्ट लिया जाएगा और जो पास हुआ उसी को प्रसादम दिया जाएगा, कूपन दिया जाएगा, सब प्रसाद बच जाएगा लगता है ना। और चिरंजीव की पत्नी का नाम था सुनंदा, और सुनंदा के पिताजी का नाम था दामोदर सेन। और चिरंजीव पहले गंगा नदी के किनारे पे रहते थे कुमार गांव में, और गणद्वज दीपिका में बताया गया कि वो कृष्ण लीला में कौन थे, एक गोपी थे जिसका नाम था चंद्रिका। हरे कृष्ण। वैसे नाम सुनने से हम पवित्र हो जाते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जस्ट रिमेम्बरिंग द डिवोटीज विल बिकम प्यूरिफाइड। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्री श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु के भक्तगणों के बारे में वर्णन करना सुनना ये बहुत प्यूरिफाइंग है, बहुत शुद्ध करने वाला है, स्पेशली उस दिन जब उनका तिरुभाव दिवस हो या आविर्भाव दिवस हो। तो मेरी कोई पात्रता नहीं है, मैं श्री गुरु श्री प्रभुपाद के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करके कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, एकत्रित वैष्णवों का भी आशीर्वाद, स्पेशली श्री लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री राधेश्याम प्रभु प्रभु भी। आज ये अच्छा देखने को मिला, मंगल आरती में बहुत सारे भक्त अटेंडेंस बहुत अच्छा था। मुझे पता चला कि रास विग्रह प्रभु ने अपने सब काउंसिलर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि मंगल आरती में आने के लिए। करेक्ट, रास विग्रह प्रभु इज हियर समवेयर, प्रभु शायद कहीं सुन रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यद यद आचरति श्रेष्ठस। जब कोई लीडर कोई चीज करता है तो सब लोग उसको फॉलो करते हैं। और एक्चुअली ये मंदिर राधा वृंदावन चंद्र मंदिर इसीलिए बनाया गया, ये सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए रहने की जगह नहीं है, ये इसलिए बनाया गया कि ब्रह्मचारी गृहस्थ सब भक्त आ सके, स्पेशली सवेरे के कार्यक्रम में। तो हम ये शुरुआत कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन यहाँ पर आए, भक्तों के संग में साधना करें। ऑफकोर्स हर रोज तो संभव नहीं होता क्योंकि सबकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन एटलीस्ट सप्ताह में एक दिन सब एकत्रित हों तो इतना अच्छा लग रहा था। जैसे जयपुर में गोविंद देव मंदिर है, गोविंद देव मंदिर में मंगल आरती में कितने होते हैं, कम से कम 400-500 डिवोटीज होते होंगे, कभी कभी और भी ज़्यादा। या आप इस्कॉन वृंदावन में जाओगे, स्पेशली कार्तिक महीने में तो मंगल आरती में ही सब हाउसफुल होता है, और दिन में तो पैर रखने की जगह नहीं होती। तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ, लोग मेरा लाभ ले रहे हैं। नहीं तो अगर हम मंदिर के पास में भी रह रहे हैं और मंदिर रेगुलरली नहीं जा रहे, तो फिर भगवान को लगता होगा कि माझा कसा मित्र है, मला भेटायला येत नाही, ये मेरे ही दोस्त हैं, मेरे ही भक्त बोलते हैं, अपने आप को कभी मिलने नहीं आते। तो वी शुड बी वेरी ईगर कि यहाँ पर प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, जहाँ पर विग्रह की सेवा हो रही है वो स्थान बहुत भाग्यशाली। तो आज विशेष करके मैं थोड़ा सा रघुनंदन ठाकुर के बारे में बोलूँगा। आज बंसीदास बाबा जी महाराज का भी तिरुभाव दिवस है, और अभी आने वाले एक सप्ताह में रूप गोस्वामी का भी है, तो मैं थोड़ा सा आज बोलूँगा इनके बारे में और रूप गोस्वामी के बारे में ज़्यादा। मैं जो गौर कथा क्लास से 10 बजे कहते हैं, हमने चेंज करके 10:30 से 10 किया क्योंकि मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, रोड्स मुंबई के रोड काफ़ी बरसात के कारण टाइम ज़्यादा ले रहे। तो पहले रघुनंदन ठाकुर के बारे में, रघुनंदन ठाकुर जैसे यहाँ बताया गया, ये श्रीखंड गांव के वासी थे, और इनके द्वारा जो सेवित डीटीज हैं वो डीटीज का नाम है गोपीनाथ, वो डीटीज अभी भी हैं। आप में से कोई लोग गए हैं श्रीखंड कभी? मैं देखा है तो मालूम है श्रीखंड क्या होता है, एक श्रीखंड सबको किचन वाला श्रीखंड याद आ रहा है, महाराष्ट्र में बहुत फेवरेट आइटम है। नहीं, कभी भगवान के रिलेटेड नाम भी ऐसे होते हैं प्रसाद से रिलेटेड, तो याद करना बहुत इजी हो जाता है। इसमें जगन्नाथ पुरी में आपको पता है कि वो गंभीरा कहाँ है, नरेंद्र सरोवर तो याद नहीं, लेकिन आनंद बाजार कहाँ है सबको याद रहता है। क्या कि तो श्रीखंड ये ग्राम है, बहुत आप में से लोग गए हो देखा होगा, इतना सुंदर गाँव है अभी भी, हालांकि 500 साल हो गए और सभ्यता में बहुत बदलाव हो गया है। अब देखते हैं वृंदावन भी अभी शहर की तरह लगता है, और मायापुर में भी बहुत सारे बिल्डिंग्स आ गए हैं, हाई राइजिंग अपार्टमेंट्स, लेकिन श्रीखंड ग्राम जो है अभी भी बिल्कुल ग्राम की तरह सुंदर मड हाउस, मिट्टी से बने हुए घर, और गायों की रामभानी की आवाज़, और बहुत खुला वातावरण, बहुत सारे सरोवर और कुंड। तो महाप्रभु के भक्त बहुत स्पेशल हैं। यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि महाप्रभु के एक भक्त जो है वो पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं, इतना उनका पोटेंसी है। वन डिवोटी एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य कैन लिबरेट द होल यूनिवर्स। इसीलिए वो शुरुआत में बोलते हैं कि मैं सब वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ, छोटा बड़ा सबको, और गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, या कोई कोई भी आश्रम में। और वो कहते हैं कि सब जैसे लोचनदास ठाकुर जो कि मुकुंद सरकार के भाई, नरहरि सरकार के शिष्य हैं, तो उन्होंने भी चैतन्य मंगल किताब लिखा है। तो उस किताब की शुरुआत में पहले वो पूरा एक अध्याय खाली वैष्णव का नाम बताते जा रहे हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करता हूँ, नित्यानंद को प्रणाम करता हूँ, अद्वैत गदाधर, शिवा स्वरूप दामोदर, मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त, पुंडरीक विद्यानिधि, जस्ट होल चैप्टर इज अ लिस्ट ऑफ डिवोटीज। कोई लगे, कोई किसी को लगे क्यों इसका टाइम वेस्ट करें, कथा जल्दी शुरू करो, लेकिन वो बोलते हैं ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि महान वैष्णवों को याद करना, ये भी एक प्यूरिफाइंग एक्सपीरियंस है, इससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे हम प्रभुपाद जी को याद करते हैं, सुबह सुबह गुरु को याद करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ये जो स्मरण है इनको स्मरण करने से, जैसे ये सब ये छह गोसाई कोरी चरण वंदन जहा हुई थे विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, सारे विघ्न ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाते हैं और भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। गौरंगीर संगी घन नित्य सिद्ध कोरी मानी थे जाए ब्रजेंद्र सूत पाश। ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, गौरंगीर दुती पद जार धन संपद, मतलब है जिसने गौरंग महाप्रभु के चरणों को अपना संपत्ति बना लिया, जिसने महाप्रभु के चरणों को अपना सर्वस्व बना लिया, से जाने भक्ति रस सार, ये अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ भक्ति। गौरंगीर मधुर लीला जारे कर्ण प्रवेशीला, गौरंग महाप्रभु की लीला जिसके कानों में प्रवेश करते हैं, हृदय निर्मल भेल तार, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। और जे गौरंगेर नाम लय तार होए प्रेम उदय, जब गौरंग महाप्रभु का नाम भी लेते हैं गौरंग, अभी आवाज से लग रहा है तीन दिन से निर्जला उपवास रखा है, थोड़ा तो जोर से बोले गौरंग 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 गौरंग, मन मन में बोलते रहिए जय गौरंगेर नाम लय तार होए प्रेम उदय, प्रेम जागृत होते। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी लिखा हुआ कि ये कथा सुनने से प्रेम मिलता है, मैंने चार बार पढ़ ली प भी नहीं मिला अभी तक, ये प्रेम कभी मिलेगा? यहाँ लिखा है ये डिवोटी को प्रार्थना करने से प्रेम मिलता है, कुछ भी नहीं हुआ, राधा कुंड में स्नान कर दिया, कितनी बार स्नान कर लिया। तो महाराज जी बता रहे थे कि यू हैव टू हियर एंड चैंट रिपीटेडली, जब बोला था कथा सुनने से प्रेम मिलता है मतलब बार बार सुनना, या नाम जप करने से प्रेम मिलता है यानी बार बार करना, श्रवणम कीर्तनम सततम स्टेज पे आना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती। और गौरंगेर संगी गण जिनके पार्षद है ये नित्य सिद्ध कोरी मान, दे आर ऑल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, इटर्नल एसोसिएट्स। जैसे कोई एक ड्रामा पार्टी होती है, एक ड्रामा में एक लीडर है, उसे एसोसिएट्स हैं, वे एक जगह पे ड्रामा करते हैं। मान लो कोई एक पार्टी है जहाँ ड्रामा पहले बम्बई में किया, फिर वो लोनावला में किया, फिर पूना में किया, फिर सातारा में किया, वो ट्रेवलिंग पार्टी है। ऐसी भगवान की एक पार्टी है जो अलग अलग जगहों पे लीला करते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में। तो कभी कभी वो भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आते हैं तो सब भक्त भी आते हैं, लेकिन अलग अलग नाम बदल जाते हैं। जो गोपियाँ हैं वो सन्यासी बन के आते हैं, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी, राग मंजरी, नयन मंजरी, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर का बताएगा नयन मंजरी, भक्ति विनोद ठाकुर कमला मंजरी। तो इसमें क्या है कि स्पेशली कृष्ण लीला गौर लीला दोनों जरूरी है सुनना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं गौर कथा करने वाला हूँ, राधेश्याम प्रभु कृष्ण कथा करने वाले, देखते हैं कंपटीशन है कौन ज़्यादा अच्छा करता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा करें और वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं अच्छा करने के लिए। तो गौर लीला कृष्ण लीला दोनों ही प्योरीफाइंग है। कृष्ण लीला में क्या है, वो समझने में थोड़ी गलत फहमी हो सकती है, इसलिए कोई क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए राधेश्याम प्रभु की तरह जो एक्सप्लेन कर सके बिना। लेकिन गौर लीला कैसे है कि गौर लीला इस बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल है ना, सेम चीज़ है लेकिन वो थोड़ा जो कम क्या बोलते हैं मंदाग्नि है ना, जिसके जिसका जो मंदाग्नि है वो भी डाइजेस्ट कर लेता है, इसकी बुद्धि उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, जिसको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो भी गौर लीला सुनने से पवित्र हो जाता है। तो हमें दोनों सुनना चाहिए लेकिन स्पेशली कृष्ण लीला ज़्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति से सुनना चाहिए, जो जो भगवान की लीलाओं को समझ सकता है शास्त्र के आधार पर। नहीं तो हम साधारण सुनेंगे, अरे कृष्ण लीला, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ में, ये क्या चरित्र, ये कैसा चरित्र है। वी हैव टू हियर फ्रॉम ऑथराइज्ड सोर्सेस कृष्ण की लीलाओं को। तो गौरंग महाप्रभु के जो पार्षद हैं, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, वो ललिता सखी के अवतार, या रामानंद राय हैं विशाखा सखी के अवतार। तो ये सब जो पार्षद हैं वो भगवान के साथ में आते हैं, भगवान के साथ में आते हैं लीला में सहायता करने के लिए। और जब लीला एक ब्रह्मांड में पूरी हो जाती है फिर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कितना उनका इंटरेस्ट है चैतन्य महाप्रभु में। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ आश्रम में थे, उनका बड़ा परिवार था, 10 बच्चे। कई बार डिवोटीज बोलते हैं प्रभु जी मैं संडे को नहीं आ सकता, मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली है, लेकिन बहुत कम है जब भक्ति विनोद ठाकुर की तरह परिवार होगा किसी। 10 मेंबर्स, 10 चिल्ड्रन, और फिर भी वो आते हैं, सुबह उठ के जप करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं ऐसे, गौर आमारा जे सब स्थाने कोरी लो भ्रमण, से सब स्थाने हेरी बवामी प्रणय भगति सन। जहाँ जहाँ भगवान गौरंग महापुरुष प्रकट हुए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने लीला की, वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ और वहाँ के चरण की धूल लेना चाहता हूँ। और यही नहीं, प्रणय भगति सन इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, लविंग डिवोटीज। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब कुमारहट्ट गए, कुमारहट्ट यह स्थान है जो कि उनके गुरुदेव ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है, तो कुमारहट्ट में चैतन्य महाप्रभु एक्सटसी में आ गए, कुमारहट्ट कुमारहट्ट पुकारने लगे और वहां की मिट्टी खाने लगे। न केवल मिट्टी खाई और उन्होंने पैक भी कर लिया, जनरली सन्यासी कुछ पैक नहीं करते। एक डिवोटी की कहानी है जो वो द डिवोटी आई थिंक वासु घोष, गोविंद घोष, वन ऑफ द ब्रदर्स वाज कीपिंग सम प्रसादम, है ना। एक भक्त थे स्पाइस, तो उन्होंने कुछ एक बार चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद के बाद बोला कि मुझे कुछ हरी टाकी चाहिए, तो लाने के लिए गए, एक घंटा लग गया। तो अगले दिन फिर से उन्होंने मांगा, तो गोविंद घोष है, गोविंद घोष, वन ऑफ द थ्री ब्रदर्स, गोविंद घोष, वासु घोष एंड माधव घोष, तो गोविंद घोष तो ब्रह्मचारी थे। तो अगले दिन उन्होंने उन्होंने जब मांगा, महाप्रभु ने तुरंत निकाल के दे दिया। तो महाप्रभु बोले कि अरे आप इतना जल्दी कैसे गए, बोले कल का मैंने स्टोर कर रखा था। तो महाप्रभु बोले ठीक है, आपको गृहस्थ होना होगा। बोले नहीं नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोले नहीं, ये संचय करना है, गृहस्थ आश्रम में अलाउड है, ब्रह्मचारी आश्रम में अलाउड नहीं है। मैं कई बार दोपहर की रोटी शाम को लेना है, ये अलाउड है। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल एक्यूमुलेशन, इवन गृहस्थ को भी एक्यूमुलेशन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जितना हम एक्यूमुलेट करते हैं उतना एंग्जाइटी बढ़ जाता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे नहीं है, तो आपको अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन लेकिन अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, 10,000 रुपये हैं, तो हर 10,000 के 10 सेकेंड में नींद खुलती है। या इवन राधेश्याम प्रभु तो पैसा नहीं था, लैपटॉप साथ में है, तो नींद आने में डर लगता है। नहीं एक एक लीला पता चली, राधेश्याम प्रभु आई कैन डिस्क्राइब योर पास टाइम ऑल्सो। एक बार क्या, राधेश्याम प्रभु के असिस्टेंट है, उनका लैपटॉप जो है, उन्होंने लैपटॉप कहीं गलत रख दिया था, तो राधेश्याम प्रभु ने छुपा दिया और फिर उनसे पूछा कि अरे लैपटॉप कहाँ है, तो घबरा गई। ना तो जी राधेश्याम प्रभु गुस्से में, तो मतलब इंद्र जी को भी डर लगता है ना। वेयर इज माई लैपटॉप, वेयर इज माई लैपटॉप। राधेश्याम प्रभु का जो इनर सर्कल्स के डिवोटी जानते हैं उनको, है ना, जैसे इसमें कभी कभी प्रभुभा जी बोलते हैं ना, क्रोध को भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। तो फिर बाद में राधेश्याम प्रभु ने बता दिया, लेकिन एक बार क्या हुआ, राधेश्याम प्रभु भूल गए लैपटॉप, उनके सर्वेंट ने छिपा दिया, राइट, समथिंग लाइक दिस। वो सर्वेंट यहाँ अभी पुराने सर्वेंट। एनीवे द पॉइंट आई वाज मेकिंग इज द लेस यू हैव यू आर हैप्पियर। ऑफकोर्स गृहस्थ आश्रम में थोड़ा तो एक्यूमुलेट करना जरूरी है, वी कैनॉट बी लाइक बेगर्स। गृहस्थ आश्रम को अगर कुछ नहीं रखें तो वो गलत है, वो फिर मतलब रासाभास हो जाता है। जिस आश्रम में उसके नियम पालन करने चाहिए, तो गृहस्थ आश्रम में थोड़ा, लेकिन भागवत के 11वें स्कंद में कहानी बताई गई, वो 24 गुरु, उसमें कहानी आती है ना कि एक व्यक्ति एक्यूमुलेट करते हैं मधुमक्खी सब, और फिर वो उसको पूरा भगा के सब छीन के ले आते हैं। तो सच्ची संपत्ति का मतलब है कृष्ण नाम की संपत्ति। बाइबल में कहा गया, सीक द वेल्थ विच द थीव्स कैन नॉट स्टील। ऐसी संपत्ति लो जो चोर चुरा नहीं सकते। संपत्ति क्या, हरि नाम, हरि कथा। कभी कभी पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं आया कि इसने मेरा 40 माला चुरा लिया। कभी ईर्ष्या नहीं होती कि प्रभु जी इसने ज्यादा जप कर लिया, इसने, आप भी कर सकते। तो दिस इज रियल वेल्थ, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ ऑफ होली नेम, वैष्णव सेवा। और ये प्रभुपा एग्जांपल दिखाते हैं पिगी बैंक का। पिगी बैंक इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलक है, जिसके पास है उसको मालूम होगा गोलक है ना। बचपन में मेरे पास भी होता था, इतना छोटा सा। तो मैं किसी घर जाता हूँ रिलेटिव के, तो कुछ पैसे देते, उस समय कोई एक रुपया भी दे तो बहुत वैल्यू होती थी। आज मेरे चाचा ने एक रुपया दिया तो मैं उसको गोलक में डालता, किसी ने 50 पैसे दिए तो 20 पैसे भी थे, गोल्डन गोल्डन अवतार 25, और सब एकत्र करके साल में एक बार फोड़ा तो 250 रुपये हो गए थे, कितनी खुशी होती थी। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरी एक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस यू डू इज स्टोर्ड इन योर अकाउंट। जैसे आज मैंने एक घंटा जप किया तो मेरे अकाउंट में, मैंने एक घंटा कथा सुनी तो अकाउंट में, जागते हुए सुनी तो और भी अच्छा, और मैंने एक प्रसाद स्पॉन्सर किया या जन्माष्टमी में एक अभिषेक स्पॉन्सर किया उससे भी अच्छा, जयदेव प्रभु की तरह यू नो लोगों को प्रेरित किया कलेक्शन करने के लिए, दैट इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस। इवन खुद सेवा करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों को सेवा में इंस्पिरेशन देना। और अपने एक एक बार प्रसाद खाया वो भी एक्यूमुलेशन है, यानी दैट इज ऑल्सो कृत पुण्य पुंज, वो एक्यूमुलेट हो जाता है जब उस लेवल पर, तब हम भगवान के साथ खेल सकते हैं, भगवान की लीला में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आज के श्लोक में ये जो वर्णन किया गया ये भक्तों का, मुकुंद नरहरि रघुनंदन सुलोचन चिरंजीव ये सारे डिवोटीज इस गांव में रहते हैं, इसका नाम है श्रीखंड। रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाते रथ यात्रा के लिए, चैतन्य तो पुरी में रहते सॉरी, और बाकी सब भक्त उनसे मिलने आते, तो उसमें एक ग्रुप श्रीखंड का होता था, एक ग्रुप शांतिपुर से होता था, एक ग्रुप नवद्वीप से होता था, टोटल 7 ग्रुप्स होते थे। और रघुनंदन जो है वो एक ग्रुप में मुख्य डांसर थे, नृत्य करने वाले थे। एक बहुत सुंदर कहानी है जो रघुनंदन की महानता का वर्णन करती है। उनके पिताजी एक विग्रह की सेवा करते, जो आज भी है वहां पर विग्रह, जिसका नाम है गोपीनाथ। तो ये विग्रह मुकुंद उनकी रोज सेवा करते, प्रेम से भोग लगाते, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनको कहीं दूर जाना था, तो उन्होंने रघुनंदन को बताया कि बेटे मैं जा रहा हूँ, आप ऑफरिंग कर देना। तो चले गए, और रघुनंदन पहले कभी ऑफरिंग किए नहीं थे, तो उन्होंने भगवान को ऑफरिंग किया लड्डू। और जब ऑफरिंग करने के बाद 10 मिनट बाद जब वो प्लेट लेने गए तो देखा ये लड्डू वैसे ही हैं, तो उनका बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप स्वीकार करो। भगवान गोपीनाथ उनसे डायरेक्टली बातचीत करते थे, जैसे कांचीपुरम में कांचीपूर्ण नाम के भक्त थे, वो वरदराज स्वामी से डायरेक्टली बात कर रहे थे। यहाँ पुणे से भी कई डिवोटीज होके आए अति वरदराज दर्शन के लिए, और आज मैं भी उसी के लिए जा रहा हूँ, थोड़े अपने मन को तैयार कर रहा हूँ। हाउ मेनी हैव बीन देयर, कितने भक्त गए डीटीज के दर्शन के लिए? वुडन डीटीज, ये जो डीटीज एक्चुअली ओरिजिनल डीटीज हैं, जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने जब कांचीपुरम आए, नित्यानंद प्रभु कांचीपुरम आए, जब 1000 साल पहले रामानुजाचार्य थे, डायरेक्टली उनके शिक्षा गुरु बात करते थे। तो वो विग्रह, मूल विग्रह अभी कुछ दिनों के लिए और दर्शन दे रहे, 1 से 17 अगस्त तक, 2 हफ्ते। और मैं थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि बहुत स्पेशल है। लास्ट टाइम था 1979 में दर्शन था, उस समय तो किया नहीं। आप में से कितने भक्त थे 79 में? आप थे लेकिन वहाँ नहीं थे, कहीं ना कहीं थे, आत्मा इटर्नल है इसलिए। और नेक्स्ट दर्शन होगा 2059, कितने डिवोटीज यहाँ पर होंगे 2059 में? ये भी जो यंगस्टर्स हैं वो होंगे, तो ये बहुत। और इवन गवर्नमेंट भी आश्चर्यचकित हो गई कि परशुराम प्रभु जी भी दर्शन करके, एक बार नहीं 2 बार दर्शन करके आए, क्योंकि वो डीटीसी यहाँ सेवा करते हैं इसलिए। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को भी सरप्राइज, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 50,000 लोग आएंगे, अभी 1 लाख, और अभी कल मुझे पता चला कि अभी 2 लाख लोग रोज आ रहे हैं एवरी डे। तिरुपति बालाजी 70,000 डिवोटीज कम एवरेज, यहाँ पे 2 लाख पीपल, मतलब भारत में देखो कितना अभी भी धर्मों में आस्था है, लोगों को श्रद्धा है। हालांकि भौतिक सभ्यता बढ़ रही है, टेलीविजन इंटरनेट की माया बहुत स्ट्रांग है, फिर भी ये संस्कार है। इसलिए प्रभुपाद जी की बहुत स्ट्रांग इच्छा थी कि भारत में सब कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, क्योंकि सबके अंदर रूट्स हैं ऑलरेडी, सिर्फ उनको जगाना है। सुषुप्त अवस्था में। तो ये जो डीटीस हैं भरद्वाज, ये भगवान डायरेक्टली बातचीत करते थे रामानुजाचार्य के साथ, रामानुजाचार्य के शिक्षा गुरु कांचीपूर्ण के साथ। जैसे हम पढ़ते हैं साक्षी गोपाल के डीटीस हैं, वो बात करते हैं ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण बोलते हैं चलो आपको अभी आना है विटनेस देने के लिए हाई कोर्ट में, विद्यानगर हाई कोर्ट में। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं मैं डीटीज हूं, मैं चल नहीं सकता। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया डीटीज तो बोल भी नहीं सकते, आप बोल सकते तो चल भी सकते हो। तो भगवान को पराजित कर दिया डिबेट में। तो यहां पर रघुनंदन भगवान को बोले प्रभु आपने स्वीकार नहीं किया, आप स्वीकार करिए। भगवान ने बोला मैंने खा लिया। अरे कैसे खा लिया? यहां पर भगवान बोले कि मैंने आंखों से खा लिया। जनरली यही ऑथराइज प्रोसेस है। अभी हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं तो जितना ऑफरिंग किया सब बाहर आता है। हो सकता है बाहर रूम तक नहीं आए, लेकिन इसके पहले मैं भी आज से 25 साल पहले मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में पुजारी था, तो मैं 12:30 की आरती करता था। तो 12 बजे भोग लगाते, फिर 12:25 को प्लेट बाहर आती, और 12:25 से 12:30 में डिसाइड होता था क्या चीज किसके लिए दिया जाएगा। तो ये तो ऑथराइज्ड है ना, लेकिन भगवान से पर्सनली सब बाहर आते। कोई कोई मंदिरों में पुजारी और यू नो डोनेशन के रूप में होता है। तो ये भगवान आपने खाया तो ये आंखों से मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने उनकी खुशी के लिए फिर से खा लिया, सारे लड्डू खा लिए। और शाम को पिताजी लौट कर आए, रघुनंदन भगवान को भोग लगाया आपने? बोले हाँ लगाया। तो बोले महाप्रसाद किधर है? बोले महाप्रसाद महाप्रसाद भगवान सब खा लिया, सब खा लिया मला शिकाऊ तो। ये मेरे को सिखा रहे हो? मैं 25 साल से ऑफरिंग कर रहा हूँ, अब मुझे सिखा रहे? भगवान खाते हैं पूरा को पूरा देते हैं ये ना। बोले नहीं नहीं भगवान ने खाया, पहले वो नहीं खा रहे थे, फिर मैंने बहुत इंसिस्ट किया पूरी, उसका विश्वास नहीं हुआ। बोले फिर से ऑफरिंग करो। तो इस बार जब फिर से ऑफरिंग किया, उसके पिताजी छिप के देख रहे थे खिड़की से। फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप स्वीकार करो, मेरे पिताजी भी देख रहे हैं। तो इस बार भगवान ने आधा लड्डू खाया, आधा लड्डू वापस कर दिया। ये भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हमारा वो लेवल नहीं है, हम अगर बोले भगवान पूरा आधा खा के दिखाओ, भगवान बोलेंगे ठीक है जाओ भाग जाओ मैं नहीं करता, गेट लॉस्ट है ना। हम उस लेवल के ऊपर नहीं है। जैसे प्रभुपाद कोई मंदिर में आते थे, मंदिर में डीटीस को देख के बता सकते थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है मंदिर में। डीटीस से प्रभुपाद डायरेक्ट बातचीत कर सकते, प्रभुपाद बोल सकते देखिए क्या पे क्या समस्या है। तो प्योरिटी के अनुसार, शुद्धता के अनुसार। एक बार तो प्रभुपाद जी तिरुपति में भी गए, बालाजी मंदिर, और वहाँ के पुजारियों ने प्रभुपाद का स्पेशल अरेंजमेंट किया कि प्रभुपाद जी अंदर थे, दरवाजा बंद किया गया, प्रभुपाद और बालाजी साथ में थे। और क्या बात की इन्होंने इसको पता है? प्रभुपाद को पता है, आप जब जाओगे तो पूछ सकते हैं। तो प्योर डिवोटी ही कैन कन्वर्स विद द लॉर्ड। जैसे हम भी शुद्ध होते हैं तो हमारा रियलाइजेशन अप्रिशिएशन बढ़ता है अर्चे विग्रह की सेवा के लिए। तो ये भक्ति का इसलिए इंपॉर्टेंट आइटम है, स्पेशली गृहस्थ आश्रम में। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाथ। तो मुकुंद अपने बेटे की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। ये माता पिता को बहुत खुशी होती है जब वो देखते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री भक्ति में बहुत प्रगति कर रहे हैं। इनफैक्ट ये माता पिता का पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति प्रदान कर। एक डिवोटी प्रभुपाद जी को लेटर लिख रहे थे कि प्रभुपाद मैं बहुत बिजी हूँ, तो मेरे को ड्यूटी वर्शिप भी करना है और बच्चों को भी देखभाल करने हैं। तो प्रभुपाद जी बोले आपके बच्चों की देखभाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद स्पेशली बोलते हैं कि आप ये जो इस्कॉन में भक्तों में घर में बच्चे जन्म लिए हैं, दे आर फ्रॉम वैकुंठ, यानी वैकुंठ से आए हैं, तो उनकी सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है गृहस्थ डिवोटी के लिए। उसको दोनों करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैलेंस करना है कि बच्चों को कृष्ण भक्ति का संस्कार देना। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बैठे थे और सारे भक्तों को गुणगान कर रहे थे। He was glorifying all the devotees. और उन्होंने श्रीखंड के एक भक्तों को एक साथ बुलाया, मुकुंद रघुनंदन और नरहरि। मुकुंद के बेटे हैं रघुनंदन और रघुनंदन के चाचा हैं नरहरि और नरहरि के भाई हैं मुकुंद, मुकुंद के भाई माधव। अभी टाइम है, 15 मिनट बाद टेस्ट होगा। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु से कैजुअली सब भक्तों से मिल रहे थे और उन्होंने प्रश्न पूछा, मुकुंद दासेर पूछे श्री शची नंदन, तुम्ही पिता तुम्हारा पुत्र श्री रघुनंदन। भगवान पूछ रहे हैं, मुकुंद यू आर द फादर एंड रघुनंदन इज योर सन, इज दैट राइट? क्या रघुनंदन आपके बेटे हैं और आप उनके पिता हो? किबा रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनय, क्या दूसरा पॉसिबिलिटी है कि आप पिता हो और रघुनंदन आपके बेटे हैं? निश्चय कर कह जाऊ को संशय, मेरे मन में डाउट है। सबके डाउट क्लियर करने वाले भगवान के मन में डाउट है, शंका है कि आप पिता हो ये आपके बेटे हैं या आपके बेटे पिता हैं और आप बेटे के बेटे हैं, है ना? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है, आमी तार पुत्र ए आमार निश्चय है। मुकुंद ने जवाब दिया कि मेरे बेटे जो ऑफिशियली मेरे बेटे हैं रघुनंदन, एक्चुअली वो मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूं। क्यों? हमारा सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन है ते है, हम सबके कृष्ण भक्ति जो है रघुनंदन के कारण है, अतएव रघुनंदन पिता हमारा निश्चित है, रघुनंदन हमारे पिता हैं। तो मैं आज सुबह मजाक कर रहा था, प्रेम स्वरूप प्रभु उनके पिताजी भी परिक्रमा कर रहे थे साथ में तुलसी पूजा के, तो दोनों मेरे साथ में, मैं पूछ रहा था कौन पिता है कौन पुत्र है। तो प्रेम स्वरूप प्रभु यहाँ बैठे हैं, उनके पिताजी भी कहीं पर होंगे, तो उनके पिताजी बोले कि वो मुझे कृष्ण भक्ति में लेके आए इसलिए वो पिता है, ब्रह्मचारी होके भी पिता है। यानी रियल पिता का मतलब है जो कृष्ण भक्ति में प्रेरणा दे, इंस्पिरेशन दे, इसलिए गुरु को पिता बोला जाता है, आध्यात्मिक पिता। या जो काउंसलर है वो भी पिता की तरह है, जो हमको मार्गदर्शन करते हैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पर, वो पिता के समान है। तो मुकुंद दास की बात को सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने अपना जजमेंट दिया, सुनी हर्षे कहे प्रभु तुम्ही कहिला निश्चय, जहा हैते कृष्ण भक्ति से गुरु है। तो मुकुंद दास ने से निर्णय सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु से सपोर्ट किया, बोले यस दिस इज राइट, वन हु अवेकन्स वन्स डिवोशनल सर्विस इज अ गुरु, जो किसी की भक्ति को जागृत करे वही गुरु है वही पिता है। भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुख, भक्तेर महिमा कहिते है पंचमुख। महाप्रभु को भक्तों के गुणगान करने में बहुत आनंद मिलता था, और जब वो बोलने लगते भक्तों के बारे में तो ऐसे बोलते जैसे उनके पास पांच मुंह। अभी मुकुंद भी साधारण नहीं है, ऐसा नहीं कि रघुनंदन महान भक्त है और मुकुंद नियोफाइट डिवोटी, ऐसा नहीं है। भगवान मुकुंद को बारे में बोलने लगते हैं सब भक्तों को बुला के, भक्तगण सुना मुकुंदेर प्रेम कथा, सुना प्लीज हियर द लविंग एक्सटेसिस ऑफ मुकुंद। वो क्या है? निगूढ़ निर्मल प्रेम जेन दग्ध हेम, उनका प्रेम ऐसा है दग्ध हेम, जो सोना होता है उसको जब एकदम शुद्ध किया गया तपाया गया हो वो तप्त कांचन जिसको बोलते हैं, वो उस प्रकार का उनका प्रेम है। या खीर में जैसे रबड़ी होती है, बासुंदी होती है, वेरी डीप लव फॉर कृष्ण। एक कहानी है, क्योंकि मुकुंद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थे और उस समय जो मुसलमान राजा था उसके वो पर्सनल फिजिशियन थे, उसका पर्सनली ख्याल रखते थे। तो एक दिन राजा उनको कुछ बुला रहे थे, कुछ सलाह कर रहे थे, एडवाइस ले रहे थे उनके डाइट के बारे में। राजा ऊंचे आसन पर बैठे थे और बातचीत कर रहे थे उनसे। राजा के एक सेवक उनको मोर का पंख से पंखा करने आए। हमारे यहाँ जो ड्यूटीज को किया जाता है, लेकिन वो तो राजा था तो मुसलमान राजा, उसको किया जा रहा था। और जब शिक्की शिक्की पीछे देखी मुकुंद प्रेमावश्य हैला अति उच्च टुंगी है ते भूमि ते पड़ीला। जब उसने मोर का पंख देखा उसको कृष्ण की याद आ गई और जमीन पर गिर पड़े ऊंचे आसन से। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया, ये तो मेरे डॉक्टर हैं, मेरे डॉक्टर ही मर गए। डॉक्टर मुझे ठीक करने हैं, डॉक्टर खुद गिर गए, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उनके पास में गए और आपने नामी या करायला चेतन नीचे हरि बोल उनका धीरे धीरे होश में ले आए। और होश में आने के बाद पूछे, राजा बोले व्यथा तुम्हें पाईला कौन ठाई, क्या बीमारी हो गई, कैसे आप गिर गए। मुकुंद कहे अति बड़ा व्यथा नहीं पाए। मुकुंद बोले एक्चुअली मेरे को ज्यादा बीमारी नहीं है। फिर राजा ने पूछा फिर गिर क्यों गए आप, कैसे गिर गए, आपका बैलेंस गिर गया, क्या हो गया। राजा कहे मुकुंद तुम्हें पड़ीला की लागी। मुकुंद कहे मोरा व्याधि आछे मृगी, मेरे को एक बीमारी है मृगी यानी एपिलेप्सी, मैं चक्कर आ जाते हैं, मैं कभी कभी गिर जाता हूँ। अभी मुस्लिम राजा उसको कैसे बताएं कि मैं भाव विवल हो गया था, मैं यानी कृष्ण का स्मरण हो गया था। तो बोला कोई बात नहीं, एपिलेप्सी होगी। लेकिन राजा बुद्धिमान था, राजा समझ गया कि ये कुछ छिपा रहे हैं, ये तो इतने महान भक्त हैं, साधारण नहीं है। मुकुंद मुक्त पुरुष है। रघुनंदन का जहां घर था उसके पास में एक भगवान कृष्ण का मंदिर था और मंदिर के किनारे पे एक सरोवर था। सरोवर के तट पे एक कदंब का वृक्ष था, इसमें से रोज दो फूल प्रकट होते थे। समझ आ रहा है कि नहीं। मुकुंद के घर के पास एक सरोवर है, सरोवर के तट पे एक वृक्ष है, वृक्ष के दो फूल हैं और भगवान को अर्पण होते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी सेवा को स्वीकार करते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु तीनों भक्तों को बुलाते हैं, मुकुंद, रघुनंदन और नरहरि। नरहरि, मुकुंद और रघुनंदन, मुकुंद, रघुनंदन और नरहरि, ये तीनों भक्तों को एक साथ बुलाए और मुकुंद को बोले, मुकुंद तुम्हारा कार्य आछे धन उपार्जन, आप गृहस्थ हो, आपका कर्तव्य है कि आप धन कमाओ और उसका कुछ अंश जो भगवान की सेवा में अर्पण करो। यू अर्न मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ, भौतिक और आध्यात्मिक। तो कई बार डिवोटी सोचते हैं कि ये आध्यात्मिक धन तो ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए और गृहस्थ के लिए भौतिक धन है, लेकिन चैतन्य आप लोग क्लियर बोल रहे हैं कि गृहस्थ के लिए भी भौतिक और आध्यात्मिक धन दोनों जरूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर तो इस तरह से बोलते हैं कि नाम बिना किछु नाही कुवार चौदह भुवन माझे, 14 भुवन में नाम के सिवाय कुछ नहीं है। सतत गाना हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। स्पेशली एकादशी अभी जन्माष्टमी आ रही है, हमारे अगले ऑलमोस्ट वन मंथ, लेस देन वन मंथ, 20 डेज, 20 दिनों में तो प्रयास करना चाहिए कि ये 15-20 दिन जो हम ज़्यादा नाम स्मरण करें और हर रोज एक अध्याय या दो अध्याय कृष्णा पुस्तक पढ़ें, जिससे हमारी चेतना तैयार हो सके। जैसे भगवान कृष्ण के आने से पहले 6 बालक गर्भ में आए थे और फिर बलराम जी आए, उन्होंने शुद्ध बनाया और उसके बाद फिर ठाकुर जी आए, ऐसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट हो तो नाम स्मरण के द्वारा, कृष्ण पुस्तक पढ़ने के द्वारा और मंदिर की सेवा के द्वारा अपने चित्त का मार्जन करें जिसमें हमारे हृदय में वृंदावन चंद्र प्रकट। रियल जन्माष्टमी का मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, जन्माष्टमी का मतलब है कि हमारे हृदय में कृष्ण जन्म हो, हमारे हृदय के सारे अज्ञान और अनर्थ दूर हो जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मुकुंद, रघुनंदन और नरहरि तीनों को अलग अलग सेवा दे रहे हैं। मुकुंद को बोल रहे हैं कि यू अर्न मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ, आध्यात्मिक और भौतिक धन संपत्ति अर्जन करो। फिर रघुनंदन को बोलते हैं, रघुनंदन तुम्हारा कार्य कृष्ण रस सेवा, कृष्ण सेवा बिना अन्य केहो नाही जानी, बस आप मंदिर में रहो, गोपीनाथ की सेवा करो, आरती करो, भगवान के भोग लगाओ, ये आपकी सेवा है। फिर उन्होंने बताया नरहरि को, नरहरि सबसे सीनियर थे, नरहरि तुम्ही रहो अमार भक्तगण संगे, ए तीन कार्य सदा कर तीन जने, तुम भक्तों के साथ रहो और सबको इंस्पिरेशन दो, सबको प्रेरणा दो हरि नाम लेने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत क्लियरली बताते हैं कि तीन भक्तों को तीन अलग अलग सेवा दी है, हमारे इस्कॉन संस्था में भी भक्तों को नेचर के अनुसार अलग अलग सेवा दी जाती है, लेकिन सभी भक्त का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु मुकुंद को बोल रहे हैं धन अर्जन करो, नरहरि को बोल रहे हैं कि भक्तों को इंस्पिरेशन करो, प्रचार करो, रघुनंदन को बोल रहे हैं मंदिर में भगवान की पूजा करो। हर एक व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा है, दूसरा अपना ईमानदारी से धन कमा रहे हैं, और तीसरा है प्रचार कार्य कर रहे हैं। दिखने में लगता है कि तीनों अलग अलग कार्य हैं, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केंद्र में है, तब हर कोई भगवान की सेवा में अलग अलग कार्य करके भी कृष्ण को केंद्र में रख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मंदिर हमारी संस्था का साइज बढ़ता है तो एकता बनाए रखना बहुत एक चुनौती हो जाती है। सबका अलग अलग स्वभाव, अलग अलग सेवा, और ह्यूमन प्रवृत्ति ये सोचना है कि मेरी सेवा ही बेस्ट है, मेरी सेवा सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि मेरी सेवा है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो इससे बेस्ट रहता है, ईगो अहंकार होता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं वैकुंठ मतलब जिसमें हर एक भक्त सोचता है कि दूसरे की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा भक्त ज्यादा भगवान को प्रिय है। वृंदावन में हर एक भक्त सोचता है कि कृष्ण को ज्यादा प्रिय दूसरे भक्त है। इस तरह से अपने आप को नम्र बनाए रखते हैं। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो भाइयों को बुलाया, इनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वचस्पति। ये दोनों भाई थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि भगवान दो रूप में दर्शन कर रहे हैं, एक दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी के रूप में, और दूसरा गंगा के रूप में। दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, को पता होगा तो जगन्नाथपुरी जाते रहे। दारू ब्रह्म भगवान को, जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म बताया गया। भागीरथे है साक्षात जल ब्रह्म सम, ये भागीरथी है वो भी एक्चुअली कृष्ण का स्वरूप है। अभी कई बार हम बताते हैं कि गंगा माता जी भगवान का चरणामृत है, भगवान के चरणों से आ रही है, भागीरथ की तपस्या से गंगा प्रकट हुई, ये भी सही है। लेकिन एक और अंडरस्टैंडिंग है कि गंगा जो है भगवान का, भगवान से अभिन्न है। इसका वर्णन किया गया पुराणों में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कि एक बार जब भगवान शंकर जी गोलोक वृंदावन में भगवान का गुणगान कर रहे थे, तो उनके गुणगान से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि वो जल रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान कृष्ण अप्रकट हो गए, सिर्फ जल ही जल दिखाई पड़ रहा था। तो सारे भक्त बहुत दुखी थे, भगवान अप्रकट हो गए। तब फिर एक आवाज सुनाई पड़ी कि ये शिवजी के मधुर कीर्तन से मैं जल स्वरूप में आया हूं, और जब वो फिर से शास्त्रों की रचना करेंगे तो फिर से मैं इस त्रिभंग ललित रूप में आऊंगा। तो शिवजी ने फिर शास्त्रों की रचना की। तो गंगा जो है ये साक्षात भगवान का ही रूप है। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि चार महापुरुष हैं या चार व्यक्ति हैं जो भगवान के समान पूजनीय है। वो कौन कौन से चार हैं? एक तो गंगा है, मैंने बताया, दूसरा तुलसी है, तीसरा श्रीमद् भागवत, और चौथा शुद्ध भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु दो भाइयों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सार्वभौम तुम्ही दारू ब्रह्म आराधना कर, आप जगन्नाथपुरी में रहते हो, आप जगन्नाथ की आरती करो, जगन्नाथ की सेवा करो। वचस्पति तुम्ही कर जल ब्रह्मे रस सेवन, विद्या वचस्पति तुम किसकी सेवा करो? जल ब्रह्म यानी गंगा की। फिर मुरारी गुप्ता को भगवान ने बुलाया और सब भक्तों को सुनाया कि मुरारी गुप्ता की कितनी गहरी भक्ति है। एक दिन मैं मुरारी गुप्ता के पास गया। आप जानते हैं मुरारी गुप्ता राम की पूजा करते थे। मैंने उनकी परीक्षा ली, मैंने पूछा मुरारी तुम कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण बहुत मधुर हैं और बहुत ही सारे गुणों से भरे हुए हैं और दिव्य प्रेम के स्वरूप हैं, वे रत्नों के खान हैं, बड़ा खजाना है। भगवान राम भी अच्छे हैं लेकिन कृष्ण और ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा फीचर्स हैं, यू नो, जैसे हम कोई प्रोडक्ट देते हैं और फीचर्स हैं। तो दोनों सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैं, लेकिन भगवान कृष्ण में और भी ज्यादा गुण है जो राम में नहीं पाए जाते। वो बहुत धीर भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, मधुर चरित्र कृष्ण, मधुर विलास, मधुर लीलाएं हैं, रासलीला भी करते हैं। भगवान राम तो नहीं करते रासलीला, इस तरह भगवान को टेम्पटिंग कर परीक्षा ले रहे थे। तो उसका मन थोड़ा सा परिवर्तित हुआ और फिर वो बोले प्रभु आमी तोमार किंकर है, मैं तो आपका दास हूं, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, तुम्हार आज्ञाकारी आमी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं। वो घर में गए, घर में जाके रात को सोचने लगे मैं कैसे छोड़ सकता हूं, मैं भगवान के राम के चरणों को कैसे छोड़ सकता हूं। इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, वो भगवान के वो रात में प्रार्थना कर रहे थे, भगवान राम मैं आपको छोड़ नहीं सकता, लेकिन आप ही चैतन्य महाप्रभु आप बोल रहे हो कि मेरे को छोड़ दो, कैसे छोड़ूं, ऐसा करो आज रात को ही मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि अगर मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को आज्ञा पालन नहीं करूं तो अपराध हो जाता है, उनके आज्ञा पालन करूं मतलब आपको त्यागूं तो वो भी अपराध हो जाता है, आज रात को मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे रोते 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 फिर सुबह उठे, उठे ही नहीं क्योंकि सोए नहीं थे, इसका डिवोटीज का तो नींद कहीं भी आ जाती है, भागवतम क्लास में भी आ जाती है, अगर नींद आ रही तो बोलो हरी हरी, जिसने हरी हरी नहीं बोला वो सो रहे होंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको पूरी रात नींद ही नहीं आई, क्यों बोला कैसे राम को छोड़ सकता हूँ, कैसे राम को छोड़, ये मटेरियल अटैचमेंट स्पिरिचुअल अटैचमेंट, पहले एक एग्जांपल बता रहा था आपको मटेरियल अटैचमेंट का, कि आपके पास कोई धन है तो रात को नींद ही नहीं आती, और एक डिवोटी को नींद नहीं आती विरह के कारण, है ना। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में थे, कभी कभी हा हा कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन कहा गेला ब्रजेंद्र कुमार, कृष्ण कहाँ पर हैं, कृष्ण कहाँ पर, इतना कि कई बार गंभीरा के दरवाजे बंद थे, तीन दरवाजे, और महाप्रभु बाहर, सारे ड्यूटी देख रहे महाप्रभु कहाँ है, नरेंद्र सरोवर में नहीं है, गंभीरा में नहीं, जगन्नाथ मंदिर में नहीं है। देखा तो सिंह द्वार के पास में, और वहां पे उनके पूरे अंग जो है अंदर चले गए कछुए की तरह एकदम एक्सटेसी में, ऐसे ही भगवान का ये विरह था, एक अलग प्रकार के उनको रात्रि में भगवान की इतना स्मरण होता था, तो हम नकल नहीं कर सकते इसके, हमारे लिए अच्छा है कि जल्दी सोना जल्दी उठना, वी कैन नॉट से दैट आई वाज इन एक्सटेसी रिमेम्बरिंग कृष्णा, ये बहुत एडवांस डिवोटी है। तो फाइनली मुरारी गुप्ता पूरी रात रोते रहे, और अगले दिन वो भगवान के पास गए और मेरे पास आए, प्रातः काले आसे मोरे धरिल चरण, बोलिए कांडिते कांडिते किछु कोरी निवेदन, मोर चरण धरिला, मेरे चरणों को पकड़ के रोते रोते निवेदन किया, बोले रघुनाथेर पाए मुई बेचाई ओ माथा, काढ़ीते न पारी माथा पाई बड़ व्यथा, हे भगवान मैंने अपने सिर को भगवान राम के चरणों में बेच दिया, आई एम सोल्ड आउट, मैं भगवान का बेच दिया भगवान के चरणों में, काढ़ीते न पारे माथा पाई बड़ व्यथा, मैं अपने इस दुख को सहन नहीं कर सकता, आई कैनॉट टेक, श्री रघुनाथ चरण छाड़िया न जाए तब आज्ञा भंग है, की करो उपाय, आपकी आज्ञा भंग करूं वो भी ठीक नहीं है, और आपकी आज्ञा पालन करूं यानी राम को छोड़ूं वो भी ठीक नहीं है, क्या किया जाए, ऐसे कर कृपा प्रभु दयामय, ऐसी दया करो क्या, तुम्हारे आगे मृत्यु हो, अभी मेरी मृत्यु हो जाए, आप सामने है, शरीर छोड़ूंगा तो भगवान के धाम जाऊंगा, ये मेरे को आशीर्वाद। इते सुने आमी बड़ा सुख पाईला, भगवान चैतन्य बोल रहे हैं कि ये सुन के मुझे बहुत खुश हुआ, मैंने आलिंगन किया और बताया, साधु साधु गुप्त तोमार सुदृढ़ भजन, हमारे वचन तोमार न टालीला मन, साधु 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 मतलब भाला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरे वचन से आप प्रभावित नहीं हुए, और साक्षात हनुमान तुम्ही श्री राम किंकर, आपके लिए आसक्ति साधारण नहीं है, आपके लिए आसक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि आप राम के सेवक हो, हनुमान जी गौर लीला में, हनुमान जी मुरारी गुप्ता के रूप में आते हैं, कृष्ण लीला में हनुमान जी मतलब वायुपुत्र भीमसेन है, और कलयुग में मध्वाचार्य, तो ये सब वायु के पुत्र हैं। तुम्ही केना छाड़ी बतार चरण कमल, से ही प्रभु से ही भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु र चरण, से ही भक्त धन्य, वो भक्त धन्य है जो प्रभु को नहीं त्यागता, से ही प्रभु धन्य जे न छाड़े निजे जन्म, वो प्रभु भी धन्य है जो अपने भक्त को नहीं त्यागते, दुर्दैव सेवक यदि जाए अन्य स्थान, से ही ठाकुर धन्य तारे चूले धरिया, अगर सेवक चला भी जाता है तो ठाकुर उसको चूले, चूले मतलब हाँ शिखा पकड़कर, थोड़ा सा बाल शिखा रखना जरूरी है, अगर आप गृहस्थ आश्रम पूरी हैं तो भी इनविजिबल शिखा होनी चाहिए, माताओं के लिए तो बाल लंबे होते ही हैं, लेकिन एक शिखा होनी चाहिए गुरु खींच सके, इसका मतलब गुरु के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। हम देखते हैं काला कृष्णदास ने बहुत बड़ी गलती की थी, वो भट्टाहरि कैंप में फंस गए केरला में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु गए उनको खींच कर वापस लिया, मतलब भगवान का भक्तों से कितना प्रेम है, भगवान विभीषण की कथा में बोलते हैं, जब विभीषण लंका छोड़कर इस्कॉन रामेश्वरम ज्वाइन करने आ रहे थे, वो माया वो लंका की नगरी को छोड़ के आ रहे थे, तो चार सेवक उनके साथ थे और हनुमान जी और सुग्रीव और नल नील सब देख रहे थे, राक्षस ये देखो राक्षस सामने आ रहा है, वो आक्रमण करने जा रहे थे। उसमें विभीषण ने बताया, नहीं प्रभु आप प्रभु से निवेदन करो कि मैं उनकी सेवा में आना चाहता। तो सारे वानरों ने भगवान राम से पूछा कि इसका क्या करना चाहिए, इनको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। भगवान राम भी अपना निश्चय खुद नहीं बताते, वो बाकी वानरों को बुलाते हैं, VMC वानर मैनेजमेंट कमिटी है ना, यहाँ भी मैनेजमेंट आता है और वो उसके प्रेसिडेंट सुग्रीव हैं। तो पूछते हैं, सुग्रीव व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या मत है? सुग्रीव बोलते हैं, डेंजरस, ये तो दल बदलू है, वहां से छोड़ के यहाँ है, फिर एक दिन बाद वहां चले जाएंगे, इसको नहीं लेना चाहिए। फिर नल नील जामवन से पूछा, इसको थोड़े दिन के लिए रखना चाहिए, इसका बिहेवियर देखना चाहिए, ना जैसे BTA होता है, PDC कोर्स होता है ना, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए और उसका अगर बिहेवियर ठीक है तो उसको लेना चाहिए। हनुमान जी से पूछा, आपका क्या मत है? हनुमान जी बोले कि मैंने इनको बहुत ध्यान से देखा, मैं श्रीलंका में गया तभी भी उनको देखा, मेरे मत में उनको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। अब भगवान राम सारे मत को सुनने के बाद अपना निश्चय बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं इनको अपनी सेवा में रखना चाहता, आई एक्सेप्ट। फिर भी सुग्रीव के मन में डर होता है, सुग्रीव बोलते हैं, नहीं प्रभु जी ये शायद जासूस है, जासूस ये पता लगाने के लिए हमारे सब वेपन्स कहाँ पे रखे हैं, और जाके फिर वो रावण को व्हाट्सएप कर देगा या ही मे सेंड ऑल रिपोर्ट्स, इसलिए इसको नहीं भेजना चाहिए। फिर भगवान राम एक बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं, सुग्रीव यू आर फियरफुल, आपको डर लग रहा है, आप मेरे को नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं अपने अंगुली के नोक से पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता, आई कैन डिस्ट्रॉय द होल यूनिवर्स विद द टच ऑफ माय टिप ऑफ माय फिंगर्स एंड रिक्रिएट इट नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण। लेकिन मेरा ये वचन है, सकृदेव प्रपन्न तवास्मीति याचते, कोई एक बार भी कहता है आप सभी बोलिए हे राम या हे गौरांग, मैं आपकी शरण में हूं। अगर कोई एक बार भी सच्चे दिल से ऐसे कहता है तो भगवान उसको कभी नहीं त्याग। आप कितने भी पाप कर लो, कितने भी पतित हो, करना मत लेकिन हो जाए, आप अगर ऐसे केस हुए डिवोटीज भक्ति छोड़ भी देते हैं, एक डिवोटी प्रॉपर डिसाइपल तो भक्ति पूरी छोड़ दिए थे, लेकिन क्योंकि पहले सिंसियर थे, प्रार्थना की थी, आखिरी क्षण वो हॉस्पिटल में थे और अचानक वो लेटे हुए थे, लग रहा था अभी जाने वाले, उठ गए, बोले प्रभुपाद हैज कम, प्रभुपाद आए, उनको दिखाई पड़े और फिर शरीर छोड़ा। ये हमें विश्वास होना चाहिए भगवान की दया का, क्योंकि कलयुग में हम सबके अंदर इतने अनर्थ हैं, कभी कभी अपने आप को देखकर हमें आश्चर्य लगता है, मैं इतना जप कर रहा हूं तो भी मेरा मन कितना प्रदूषित है, मेरे अनर्थ दूर ही नहीं होते, लेकिन विश्वास होना चाहिए कृष्णा कभी अपने भक्त को अबेंडन नहीं करते। ये वरदराज DTs है, उनके हाथ के ऊपर लिखा हुआ है मां शुच, चिंता मत कर, आई विल प्रोटेक्ट। तो शरणागति का मार्ग है कि अगर हम गलती से भगवान के मार्ग से अलग भी हो जाते हैं तो कृष्ण वापस लेकर आते हैं। मैं जस्ट समय हो रहा है इसलिए जस्ट कंफ्यूजन में थोड़ा सा रूप गोस्वामी के बारे में बोलना चाहता था, क्योंकि नेक्स्ट वीक उनका तिरुभाव दिवस है, तिरुभाव यस मंडे को। रूप गोस्वामी हमारी परंपरा में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हम सब जो है रूपानुग है, चैतन्य महाप्रभु ने जो भी हमें बताना था रूप गोस्वामी के द्वारा बताते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मयम। इसका अनुवाद है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु के मन की अभिलाषा है, उसको रूप गोस्वामी ने प्रकट किया, धरती पे स्थापना की, महाप्रभु के मिशन को उन्होंने स्थापना की, मंदिरों का निर्माण करना, पुस्तक लिखना, ये सब रूप गोस्वामी ने किया महाप्रभु की आज्ञा से। किसी की मन की बात को कौन जान सकता है, ये बहुत इंटीमेट है। मुझे पता चलना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ पर हैं, वो तो बहुत इजी पता चल सकता है, या उन्होंने क्या किया है पहले वो भी पता चल सकता है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, शायद बहुत बहुत क्लोज पार्षद को पता होता है। तो जो शरद गोस्वामी है, विशेष करके रूप गोस्वामी, ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान के लीला के सहायता करने के लिए रूप मंजरी है। इनफैक्ट हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, श्री रूप मंजारी पद से मोर संपदा, कि रूप गोस्वामी के चरण कमल ही सब कुछ है। इन पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने भक्तों को बोला ये भजन गाने के लिए, श्री रूप मंजारी पद, उनका इतना प्रिय था। नरोत्तम दास ठाकुर भी उनकी शरण को ग्रहण करते। मैं थोड़ा डिटेल में 10 बजे जो गौर कथा होगी उसमें बताऊंगा, लेकिन मैं 2-3 पॉइंट्स का एक सेंटेंस बता रहा हूं कि रूप गोस्वामी का जन्म कहां पर हुआ, बांग्लादेश में। एक्चुअली रूप और सनातन के पिताजी का नाम है अनुपम, सॉरी भाई का नाम है अनुपम और उनके पिताजी का नाम है कुमारदेव, और कुमारदेव के पिता के पिता के पिता वो कर्नाटक से थे, लेकिन भाइयों में कुछ मतभेद हो गया तो एक भाई कर्नाटक छोड़कर बांग्लादेश चले गए। तो वहीं पर रूप सनातन का जन्म हुआ और इतना उनका अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी था, आकर्षक, कि जो भी उनको एक बार मिलता वो उनका मित्र बन जाता। तो नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के राजा थे उस समय, वो चाहते थे, किसी ने बताया इन दोनों को अपना मंत्री बना लो, ये हिंदू परिवार से, तो हिंदुओं के ऊपर अपना बोलबाला बनाए रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो उन्होंने रूप सनातन को ऑफर किया, सनातन गोस्वामी को बोला कि आप प्रधानमंत्री और रूप गोस्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर। आज तो ये पोस्ट के लिए लोग कितना तरसेंगे, अगर कोई व्यक्ति को अचानक बोला जाए कि आप प्रधानमंत्री हैं तो सुन के शायद खुशी से हार्ट अटैक आ जाए उसका, शॉक्ड। लोग एक MP बनने के लिए तरसते हैं, लेकिन रूप सनातन रिजेक्ट किया, ये नहीं चाहिए, नॉनसेंस। लेकिन उसने धमकी दी, आप नहीं स्वीकार करोगे तो हम हिंदुओं को और तकलीफ देंगे और टॉर्चर करेंगे। तब फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मंत्री पद स्वीकार किया। ये रामकेली में रहते थे जो नवाब की राजधानी थे, लेकिन हालांकि वो दिन में महल में जाते थे, वो शाम को अपने घर के पास उन्हें राधा कुंड, श्याम कुंड, मदन मोहन ड्यूटीज रखे थे, उसकी सेवा करते रहते, भगवान से प्रार्थना करते थे कब मैं निवृत्त होऊंगा इससे। आज भारत के इतिहास में शायद ही कोई मंत्री ऐसा प्रार्थना करता हो कि कब मैं मुक्त हो जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, है ना। और एक बार चैतन्य महाप्रभु रामकेली में आए, महाप्रभु अकेले जा रहे थे वृंदावन, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख लोग हो गए और सब ऊंचे स्वर में गा रहे थे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। इतने जोर के कीर्तन की आवाज से नवाब को समाचार मिला, तो नवाब हुसैन शाह ने अपने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, सचिव को, जिसका नाम था केशव खान। केशव खान, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक सन्यासी आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य, आप जरा उसका डिटेल बताइए, उनका फाइल क्या क्या न्यूज है। तो केशव खान बहुत होशियार थे, वो हिंदू थे, वो नहीं चाहते थे कि राजा चैतन्य महाप्रभु को तकलीफ दे, तो उन्होंने उसको बहुत डाउन प्ले, बहुत कम करता है, श्री कृष्ण चैतन्य इज एन ऑर्डिनरी साधारण सन्यासी है, इनके साथ 2-4 लोग है, घबराने की कोई बात नहीं है। नवाब बहुत गुस्सा हो गया, बोले क्या बकवास कर रहे हो तुम, श्री कृष्ण चैतन्य को साधारण सन्यासी बोल रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये कौन बोल रहे, अपराध शिरोमणि है ना, जिसने इतने मंदिर बनाए, मंदिर तोड़े, इतने मर्डर किए वैष्णव का, वो बोल रहा है ये अपराध है। बताने लगा कि मैं यहाँ का राजा हूं, इतने सारे लोग मेरी नौकरी करते हैं, अगर मैं 1 महीने तनख्वाह नहीं दूं तो कोई नौकरी नहीं करेगा, लेकिन ये श्री कृष्ण चैतन्य, ये किसी को कुछ पैसे नहीं दे रहे, नहीं उनका कोई रहने की या प्रसाद की व्यवस्था कर रहे, 10 लाख लोग आ रहे और आप उसको साधारण बोल रहे हो। मेरी आज्ञा का पालन मेरे राज्य में होता है, इनकी आज्ञा का पालन पूरे ब्रह्मांड में होता है, मेरे मत में, इसको कुरान में खुदा या अल्लाह बोलते हैं, जिसको हिंदू बोलते हैं कृष्ण या ईश्वर, वही है यह सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य, और मैं ये आज्ञा देता हूं कि इसको जहां जाना जाने दो, कोई इनको रोकने का प्रयास नहीं करे, अगर किसी ने इनकी गतिविधियों में बाधा पैदा की तो मैं रोकने वाले का सिर काट दूंगा। और नवाब ऐसे वचन पूरा करने में बहुत माहिर थे। तब फिर नवाब दबीर खास के पास गए, दबीर खास कौन है, और गोस्वामी से पूछा कि कौन है यह सन्यासी, कौन है श्री कृष्ण चैतन्य। रूप गोस्वामी जानते थे कि राजा को मालूम है ऑलरेडी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा छुपाया नहीं, उन्होंने बोला जे तुम्हारा राज्य दिला, जिसकी कृपा से तुम राजा बने हो, जिनके ऐश्वर्य से तुम कार्य कर रहे हो वही है ये सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य। अरे आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आप तो राजा हो, राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तब नवाब ने बताया यस मैं भी स्वीकार करता। मतलब देखो ये मुसलमान राजा पे भी कृपा हो गई कि उसको एक कुछ क्षण के लिए जानकारी हुई कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ऐसी भगवान की कृपा है। ऐसे बताते औरंगजेब के ऊपर भी ऐसी एक बार कृपा हो गई थी, भगवान को कृपा दिखाई थी। कई बदमाशों पर ज्यादा कृपा हो जाती है ना, जगाई मधाई या रूप सनातन दोनों को कृपा मिलती है, बीच वालों को टाइम लग जाता है कई बार। इसके बाद रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिले, बहुत डिटेल प्रेयर से आपको मालूम है, बोले भगवान हम बहुत पतित हैं, आप हमको स्वीकार करो। भगवान ने उनको अपने पास में बुलाया, सिर पे हाथ रखा और बोले आज से आपका नाम होगा रूप और सनातन। सनातन गोस्वामी बोले प्रभु आप यहां मत रहो, ये राजा डेंजरस है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र में लिखा है पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं करना चाहिए और जो मांस भक्षण करे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नवाब में दोनों गुण है, ये वो राजा भी है और मांस भक्षण, तो आप यहां से वृंदावन भी मत जाओ, इतनी भीड़ में मत जाओ। तो महाप्रभु वापस आ गए और रूप सनातन वेट कर रहे थे महाप्रभु फिर कब जाएंगे। और जैसे उनको मरा था महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, रूप गोस्वामी ने रिजाइन कर दिया पोस्ट से। उनके पास इतने पैसे थे कि एक पूरी नौका भर गई गोल्ड कॉइन से। अभी आप डिवोटीज गृहस्थ आश्रम में कितना होगा आपके पास गोल्ड कॉइन, 2 किलो 4 किलो, बहुत महंगा है सोना रखना, और रखें तो भी डेंजरस है। एक तरह पूरे बोट भरे हुए थे इतना पैसे, और ये सब त्याग दिया उन्होंने। त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश का करुणया कौपी नकंड। ये सब त्याग करके भिखारी की तरह रहना बहुत मुश्किल है। हमारे भारत इतिहास में एक सी आर दास थे जो बहुत वैभव में थे, उनको बोला गया कम तनख्वाह में काम चलाओ, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, मल्टी मिलियनियर बिलियनियर, सब त्याग दिया उन्होंने। किस लिए? महाप्रभु की सेवा के लिए। फिर रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए आए प्रयाग में, और कैसे बहुत नम्रता से, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे प्रार्थना की। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश करते हैं 10 दिन के लिए गंगा के किनारे, गंगा यमुना संगम दशाश्वमेध घाट के पास। तो बहुत लंबा विषय है, तो आप में से जो भक्त बाद में 10 बजे हम चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी इस तरह पूरा उपदेश सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप किताबें लिखो। तो वृंदावन में आके किताब लिखते हैं, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, से बहुत सारी किताबें लिखते हैं। उनको एक ही चिंता होती है कि राधा गोविंद ड्यूटीज कहाँ पर हैं, वो सब जगह पर ढूंढते हैं। फिर एक छोटा बच्चा उनको बोलता है बाबा बाबा आप निराश क्यों हो, मेरे साथ चलो। और वो देखते हैं एक टीला होता है, एक स्मॉल हिल, और वहां पर एक गाय रोज दूध डाल रही है। तो रूप गोस्वामी को बताते हैं, भगवान ही होते हैं वो लड़के के रूप में, कि इसके अंदर गोविंद देव हैं। फिर गोविंद देव की स्थापना करते हैं, फिर वृंदा देवी की स्थापना करते हैं। तो रूप गोस्वामी का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी परंपरा में। और प्रभुपाद जी ने कितना महत्व माना कि जब अमेरिका जाना चाहते थे तो उन्होंने अपना जो जाने की तैयारी की वो वृंदावन में की, और वृंदावन में भी सेवा कुंज के पास। क्यों उन्होंने उस जगह को चुना? इसलिए नहीं क्योंकि लस्सी की दुकानें पास में थी। कई बार लोग वृंदावन में जाते हैं और लस्सी पी के टिक्की खा के राधे राधे बोल के आ जाते हैं ना। प्रभुपाद क्यों वहां पर चुने? क्योंकि रूप गोस्वामी की समाधि थी। आप देखोगे प्रभुपाद के कमरे से, किचन से रूप गोस्वामी की समाधि दिखाई पड़ती। और कुछ भक्त बताते हैं कि एक बार रूप गोस्वामी खुद साक्षात आ गए थे और उनको आशीर्वाद दिया था। और एक बार तो एक डिवोटी ब्रजवासी मुझे बता रहे थे कि उनके पिताजी बता रहे हैं कि एक दिन को बाहर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी, मंदिर बंद था, कोई अंदर रो रहे। तो दूसरे बिल्डिंग के टेरेस पे आके देखा तो प्रभुपाद रूप गोस्वामी के समाधि के पास, हा रूप हा गुरुदेव दया करो, रो रहे थे भगवान की कृपा के लिए। इसलिए मतलब ये पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं रूप गोस्वामी को, कि हमारी परंपरा के महान आचार्य। और जब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में गए तो उन्होंने किताब लिख रहे थे कृष्ण लीला के बारे में, वो एक ही बुक में दोनों लिख रहे थे, वृंदावन लीला और द्वारका लीला। और एक माता जी उनके सपने में आए और बोले अलग अलग लिखो। वो कौन थे? वो सत्यभामा। तो उन्होंने फिर दो लिखे, वेदग्धमादेव ललित। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब पढ़ें, ये जो ये अध्याय हैं, एक हफ्ते में चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में पूरा डिटेल में बताया गया। रूप गोस्वामी जब किताब लिख रहे थे, महाप्रभु ने आके देखा, बोला ये क्या है, ये हैंड राइटिंग नहीं है, ये क्या है, इट्स अ रो ऑफ पर्ल्स, ये मोतियों की लड़ी है। और फिर रूप गोस्वामी का फेमस श्लोक जो आज हमारे प्रिय लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने, यू कोटेड दैट वर्स, तो मुझे इंस्पिरेशन मिला। व्हाट इज दैट वर्स? तुंडे तंडा। ये संस्कृत ना ध्यान नहीं है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन है कि आई डू नॉट नो हाउ मच नेक्टर इज देयर इन द टू सिलेबल्स कृष्णा। मुझे पता नहीं है कितना आनंद है जब मैं दो अक्षर बोलता हूँ कृष्णा, तो मेरी लाखों होती है, मेरी इच्छा होती है कि लाखों लाखों जीवा हो। और जब ये नाम मेरे कानों में जाता है कृष्णा, तो मेरी इच्छा होती है लाखों लाखों कान हो। ये सब रूप गोस्वामी ने लिखा। और महाप्रभु ये देख के इतने खुश हुए, सबको दिखाया, हरिदास ठाकुर को दिखाया। हरिदास ठाकुर नामाचार्य है। अभी मैं होता बोलता, प्रभु जी ये मेरे एरिया में क्यों आ रहे हैं भाई, ये मेरा एरिया है। हाँ, अपनी वाई आर यू राइटिंग अबाउट होली नेम, आप रस के बारे में लिखो, आपको जो डिपार्टमेंट दिया है। बट हरिदास ठाकुर बिकेम सो हैप्पी, बोले मैंने इतने सारे श्लोक पढ़े हैं नाम की महिमा में, इतना सुंदर श्लोक नहीं देखा। और लास्ट में वो एक श्लोक लिखने लगते हैं भगवान के बारे में, उसमें लिखा गया महाप्रभु आए हैं सन्यासी के रूप में। और ये श्लोक सुनकर महाप्रभु बहुत नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं क्या इतनी सुंदर आप श्लोक लिख रहे थे अमृत, उसके अंदर तुमने कड़वा नीम जूस डाल दिया, मेरी स्तुति क्यों की? सरू दामोदर गोस्वामी बोले नहीं नहीं, ये खीर था, खीर के अंदर कपूर डाल दिया है, अरे और भी टेस्टी हो गया। चैतन्य महाप्रभु इतनी प्रेम करते थे। एक बार तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में कुछ गा रहे थे जो दिखने में लग रहा था लवर सॉन्ग है, एक प्रेमिका बोल रही है प्रेमी को, मैं आपको फिर से मिलना चाहती हूँ रीवा नदी के किनारे। और सारे डिवोटी सोचे थे क्या है, फिर रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि राधा रानी बोल रही है कृष्ण को कि मैं आपको वृंदावन में यमुना किनारे मिलना चाहती हूँ। तो हम अभी ये सब वैष्णव आचार्य हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और साथ में बंसीदास बाबा जी महाराज, मुझे ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन ही वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भक्ति सिद्धांत ठाकुर ना, बंसीदास बाबा जी महाराज बहुत एडवांस डिवोटी थे। हालांकि उनके ऐसा लगता था बाल लंबे हैं, उतने भौतिक रूप से क्लीन लगते थे, लेकिन वो बहुत बहुत भक्ति में आगे बढ़े हुए थे, भगवान के साथ वार्तालाप करते थे। जैसे महान वैष्णवों के चरणों में हम प्रार्थना कर सकते हैं, स्पेशली रूप गोस्वामी के चरणों में, कि हम महाप्रभु के पद चिन्हों में चल सकें, जैसे महाप्रभु के भक्तों के चरणों में चल सके, महाप्रभु का डायरेक्टली नहीं, दास दास अनुदास बन सके। और एक दिन वो आए जो लीला पुरुषोत्तम प्रभु आज बोल रहे थे, बहुत सुंदर पॉइंट मैं रिपीट करना चाहूँगा उनका जपा टॉक, विद योर परमिशन। प्रभु जी बोल रहे थे कि वो जो भगवान जब जीवा पे नित्य करते हैं, ये जो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, ये भगवान की कृपा से संभव है। वी कैन नॉट वाइब्रेट द होली नेम बाय आवर एफर्ट्स। हम ऐसे हरे कृष्णा बोलें तो कृष्णा नहीं आएंगे। मैं यहाँ बोलता रहूँ नरेंद्र मोदी आ जाओ तो थोड़ी हो आएगा उसके बहुत, लेकिन कृष्णा तब प्रकट होते हैं जब गुरु और आचार्यों की कृपा होती है। आज एक मैं प्रार्थना आपको बताऊंगा नाम जप में, जो हरिदास ठाकुर गाते थे, मैंने पहले भी एक बार बताई है, किसी को याद है प्रार्थना, व्हाट हरिदास ठाकुर वुड सिंग वन प्रेयर? कृपा करी नाम रूपे मोर जीवाया, निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाया, कि कृपा करके हे प्रभु आप नाम के रूप में मेरी जीवा में डांस करो। भगवान एक बार प्रकट हो गए जैसे, तो अंदर और बाहर हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे आप दरवाजे के पास कोई लैंप रखो तो अंदर और बाहर प्रकाश होता है। तो जीवा जो दरवाजा है, यू नो, एंट्री का पॉइंट है, यहाँ पर हरि नाम रहे तो अंदर बाहर सब शुद्ध। अघासुर तो इतना भयानक पापी था, लेकिन कृष्ण उसके जीवा में आए तो वैसे वो शुद्ध हो गया। कालियानाग तो बहुत भयानक सर्प था, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर नृत्य किया तो शुद्ध हो गया। हमारी जीवा भी कालियानाग की तरह, आप ध्यान से देखिए, यू नो, लेकिन जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान नृत्य करते हैं, हम शुद्ध बना देते हैं। लेट अस एंड, सब लोग 2 सेकंड आंख बंद करें, प्रार्थना करें कि भगवान हरि नाम के रूप में मेरी जीवा पर रहें और मुझे शुद्ध बनाएं और उनकी सेवा में लगाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न या लीला पुरुषोत्तम प्रभु यू लाइक टू मेक सम कॉमेंट्स? प्रभु जी बहुत क्वालिफाइड डिवोटी से, जो लोग नहीं थे राधेश्याम प्रभु ने इंट्रोड्यूस कराया था, हमारे जो भक्ति वेदांत गुरुकुल है वृंदावन में, प्रभु जी उसके प्रिंसिपल और फाउंडर रहे हैं कई वर्षों से, और IIT कानपुर में बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं। मैं भी उनके घर में एक बार, घर नहीं बोल सकते, आश्रम में गया था, और वहाँ पर बहुत सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम एवरी डे, और ये गोवर्धन शिला ऑल्सो ना, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द गोस्वामीज। Would you like to speak something?
I want to tell some few words about Krishnananda Prabhuji. He always associates our yatra. Once he was with our Mayapur yatra. He took us to different places and we went to Sridhar Kolavach, Kolavach Sridhar, and where he was doing bhajan. So we did kirtan and Prabhuji stayed back there. He said that I have to chant here. Actually, that is the mood by which we should actually chant, because the pure devotees, their glory is that they accepted the holy name as the ultimate form of a divinity that we can accept. And any genuine devotees, they want to perfect their life, they must take shelter of such devotees and seek the mercy of the holy name. And I was very impressed by Krishnananda Prabhuji's eagerness to seek the shelter of such wonderful devotees. So Krishnananda Prabhu ki jai ho. And the lecture today is just it's like rock candy. You can enjoy from all directions. Thank you. And he by-hearts, he has by-hearted the Chaitanya Charitamrita, and so it is nice to be in your association. Hare Krishna.
I can speak something about you. Prabhu ji mera gungan kar rahe hain, lekin aap agar Vrindavan mein jaoge, Prabhu ji ne kya kiya, main to thode shabd bol sakta hu aur impress karke taaliyan mil jate hain, lekin Prabhu ji ke aap jaoge Vrindavan mein, hamara gurukul to Prabhupada ke samay se tha, lekin लीला पुरुषोत्तम प्रभु उनके गाइडेंस में, राधाकांत प्रभु उनके पूरी टीम, आप देखोगे एक नया ही पूरा सिस्टम बन गया। जैसे राधेश्याम बता रहे थे अजय में गुरुकुल शुरू किया, इंटरेस्टिंग है वही स्थान पर जहाँ भगवान ने अघासुर का वध किया था, वहाँ पर प्रभु जी ने सुंदर गुरुकुल स्थापना की है। और जैसे प्रभु बता रहे थे सैकड़ों विद्यार्थी आ रहे हैं, और बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ। तो एक्चुअली आई शुड बी ग्लोरीफाइंग यू फॉर द सो मच अचीवमेंट्स, और सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नाउ आफ्टर देयर स्टडीज दे हैव गॉन अब्रॉड, दे आर कंटिन्यूइंग एंड प्रीचिंग इन अमेरिका अंडर प्रभुजीज गाइडेंस। आई एम ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू।